स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई कुछ पुरानी, कुछ जानी कुछ अनजानी। मंटो के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। उनके अपने समय में भी शायद मंटो की चर्चा उनके लेखन से अधिक होती थी। अश्लीलता के आरोपों में उन्हें अदालत में घसीटा गया। संस्कृति के संरक्षकों और गंभीर साहित्य के विद्वानों ने उनके लेखन को हल्का बताया, लेकिन मंटो ने अपनी जिंदगी अपने मन मुताबिक बिताई। जो मन चाहा, जो जमीर ने कहा वो लिखा। किसी ने पूछा कि क्यों लिखते हैं साहब, तो एक मजाहिया लेकिन ईमानदार लेख लिख डाला, मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूं। और सिर्फ ये काफी ना था तो अपने उस लेख की और अपनी खुद की आलोचना में एक और लेख लिखा, मंटो। सोचिए, जो आदमी खुद को खुद से जुदा करके देख सके, समझ सके, उसकी जिंदगी और कलम दोनों पर पकड़ कितनी मजबूत होगी। आज मंटो द्वारा लिखे इस आत्मकथी को सुनते हैं। उर्दू में लिखे इस लेख को मैंने थोड़ा सरल बनाने के लिए कुछ शब्दों को आम बोलचाल की हिंदुस्तानी में अनुदित किया है। मंटो के मुतालिक अब तक बहुत कुछ लिखा और कहा जा चुका है, उसके हक में कम और खिलाफ ज्यादा। ये तहरीरें अगर पेश नजर रखी जाएं, तो कोई साहबे अकल मंटो के मुतालिक कोई सही राय कायम नहीं कर सकता। मैं ये मजमू लिखने बैठा हूं और समझता हूं कि मंटो के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन एक लिहाज से आसान भी है, इसलिए कि मंटो से मेरी नज़दीकी कुछ ज्यादा है। सच पूछिए तो मैं मंटो का हमजाद यानी जुड़वा हूं। अब तक इस शख्स के बारे में जो कुछ लिखा गया है, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि जो कुछ उन निबंधों में लिखा गया, पेश किया गया है, हकीकत से बहुत दूर है। कोई उसे शैतान कहते हैं, कोई गंजा फरिश्ता। जरा ठहरिए, मैं देख लूं कहीं वो कमबख्त यहीं सुन तो नहीं रहा। नहीं, ठीक है। मुझे याद आ गया कि ये वो वक्त है जब वो पिया करता है। उसको शाम के 6 बजे के बाद कड़वा शरबत पीने की आदत है। हम इकट्ठे ही पैदा हुए और ख्याल है कि इकट्ठे ही मरेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि सआदत हसन मर जाए और मंटो ना मरे, और हमेशा मुझे ये अंदेशा बहुत दुख देता है, इसलिए कि मैंने उसके साथ अपनी दोस्ती निभाने में कोई कसर उठा नहीं रखी। अगर वो जिंदा रहा और मैं मर गया, तो ऐसा होगा कि अंडे का खोल तो सलामत है और अंदर की जर्दी और सफेदी गायब हो गई हो। अब मैं ज्यादा भूमिका नहीं बांधना चाहता। आपसे साफ कह देता हूं कि मंटो ऐसा वन टू आदमी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, जिसे अगर जमा किया जाए तो वो 3 बन जाए। मुसल्लस के बारे में इसकी मालूमात काफी है, लेकिन मैं जानता हूं कि अभी उसकी तसलीस नहीं हुई है। ये इशारे ऐसे हैं कि सिर्फ समझदार ही समझ सकते हैं। यूं तो मैं मंटो को पैदाइश से ही जानता हूं। हम दोनों इकट्ठे एक ही वक्त 11 मई सन 1912 ईस्वी में पैदा हुए, लेकिन उसने हमेशा ये कोशिश की कि वो खुद को कछुआ बनाए रखे। जो एक दफा अपना सर और गर्दन अंदर छुपा ले, तो आप लाख ढूंढते रहें उसका सुराग न मिले। लेकिन मैं भी आखिर उसका जुड़वा हूं, मुझे उसकी हर हरकत का पता है। लीजिए, अब मैं आपको बताता हूं कि ये खर्जात अफसाना निगार कैसे बना। आलोचना करने वाले बड़े लंबे लंबे निबंध लिखते हैं, अपने अनुभव का सबूत देते हैं, शोपेनहावर, फ्रॉयड, हीगल, नीचे, मार्क्स के हवाले देते हैं, मगर हकीकत से कोसों दूर रहते हैं। मंटो की अफसाना निगारी दो अंतर विरोधी तत्वों के टकराने से हुई है। उसके वालिद, खुदा उन्हें बख्शे, बड़े सख्त गिर थे, और उसकी वालिदा बेहद नर्म दिल। इन दो पाटों के अंदर पिसकर ये गेहूं का दाना किस शक्ल में बाहर निकला होगा, इसका अंदाजा आप कर सकते हैं। अब मैं उसकी स्कूल की जिंदगी की तरफ आता हूं। बहुत जहीन लड़का था और बेहद शरीर। उस जमाने में उसका कद ज्यादा से ज्यादा 3.5 फुट होगा। वो अपने बाप का आखिरी बच्चा था। उसको अपने माँ बाप की मोहब्बत तो मैसर थी, लेकिन उसके तीन बड़े भाई जो उम्र में उससे बहुत बड़े थे और विलायत में तालीम पा रहे थे, उनसे उसको कभी मुलाकात का मौका ही नहीं मिला था, इसलिए कि वो सौतेले थे। वो चाहता था कि वो उससे मिलें, उससे बड़े भाइयों ऐसा सलूक करें। ये सलूक उसे उस वक्त नसीब हुआ जब दुनियाए अदब उसे बहुत बड़ा अफसाना निगार स्वीकार कर चुकी थी। अच्छा, अब उसकी अफसाना निगारी के मुतालिक सुनिए। वो अव्वल दर्जे का फ्रॉड है। पहला अफसाना उसने बाउनवान तमाशा लिखा जो जलियांवाला बाग के खूनी हादसे के मुतालिक था। ये उसने अपने नाम से ना छपवाया। यही वजह है कि वो पुलिस की दस्त बुरद से बच गया। उसके बाद उसके मिजाज में एक लहर पैदा हुई कि वो और ज्यादा तालीम हासिल करे। यहां इस बात का जिक्र दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि उसने इंटर का इम्तिहान दो बार फेल होकर पास किया था, वो भी थर्ड डिवीजन में। और आपको ये सुनकर भी हैरत होगी कि वो उर्दू के पर्चे में नाकाम रहा। अब लोग कहते हैं कि वो उर्दू का बहुत बड़ा अदीब है, और मैं ये सुनकर हंसता हूं, इसलिए कि उर्दू अब भी उसे नहीं आती। वो लफ्जों के पीछे यूं भागता है जैसे कोई जाल वाला शिकारी तितलियों के पीछे, वो उसके हाथ नहीं आती। यही वजह है कि उसकी तहरीरों में खूबसूरत अल्फाज की कमी है। वो लठमार है, लेकिन जितने लठ उसकी गर्दन पर पड़े हैं उसने बड़ी खुशी से बर्दाश्त किए हैं। उसकी लठबाजी आम मुहावरे के मुताबिक जाटों की लठबाजी नहीं है, वो बनोट और फकैत है। वो एक ऐसा इंसान है जो साफ और सीधी सड़क पर नहीं चलता, बल्कि तने हुए रस्से पर चलता है। लोग समझते हैं कि अब गिरा, अब गिरा, लेकिन वो कमबख्त आज तक कभी नहीं गिरा। शायद गिर जाए औंधे मुंह कि फिर ना उठे, लेकिन मैं जानता हूं कि मरते वक्त वो लोगों से कहेगा कि मैं इसलिए गिरा था कि गिरावट की मायूसी खत्म हो जाए। मैं इससे पेशतर कह चुका हूं कि मंटो अव्वल दर्जे का फ्रॉड है। इसका और ज्यादा सबूत यह है कि वो अक्सर कहा करता है कि वो अफसाना नहीं सोचता, खुद अफसाना उसे सोचता है। यह भी एक फ्रॉड है। मैं जानता हूं कि जब उसे अफसाना लिखना होता है तो उसकी वही हालत होती है जो किसी मुर्गी की अंडा देते वक्त होती है, लेकिन वो अंडा कहीं छुपकर नहीं देता, सबके सामने देता है। उसके यार दोस्त बैठे होते हैं, उसकी तीन बच्चियां शोर मचा रही होती हैं, और वो अपनी मखसूस कुर्सी पर उकड़ू बैठा अंडे दिए जाता है जो बाद में चूं चूं करते अफसाने बन जाते हैं। उसकी बीवी उससे बहुत नाराज है। वो उससे अक्सर कहा करती है कि तुम अफसाना निगारी छोड़ दो, कोई दुकान खोल लो। लेकिन मंटो के दिमाग में जो दुकान खुली है उसमें मनियारी के सामान से कहीं ज्यादा सामान मौजूद है, इसलिए वो अक्सर सोचा करता है कि अगर मैंने कभी कोई स्टोर खोल लिया तो ऐसा ना हो कि वो खुद कोल्ड स्टोरेज यानी सर्द खाना बन जाए, जहां उसके तमाम ख्यालात और अफकार ठंडे पड़ जाएं। मैं ये मजमून लिख रहा हूं और मुझे डर है कि मंटो मुझसे खफा हो जाएगा। उसकी हर चीज बर्दाश्त की जा सकती है, मगर खफगी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। खफगी के आलम में वो बिल्कुल शैतान बन जाता है, लेकिन सिर्फ चंद मिनटों के लिए। और वो चंद मिनट, अल्लाह की पनाह। अफसाना लिखने के मामले में वो नखरे जरूर बघारता है, लेकिन मैं जानता हूं इसलिए कि उसका जुड़वा हूं कि वो फ्रॉड कर रहा है। एक दफा उसने खुद लिखा था कि उसकी जेब में बेशुमार अफसाने पड़े होते हैं। हकीकत इससे उल्टा है। जब उसे अफसाना लिखना होगा तो वो रात को सोचेगा, उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। सुबह 5 बजे उठेगा और अखबारों से किसी अफसाने का रस चूसने का ख्याल करेगा, लेकिन उसे नाकामी होगी। फिर वो गुसलखाने में जाएगा, वहां वो अपने परेशान सर को ठंडा करने की कोशिश करेगा कि वो सोचने के काबिल हो सके, लेकिन नाकाम रहेगा। फिर झुंझलाकर अपनी बीवी से खाम खा का झगड़ा शुरू कर देगा। यहां से भी नाकामी होगी तो बाहर पान लेने के लिए चला जाएगा। पान उसकी टेबल पर पड़ा रहेगा, लेकिन अफसाने का मौजू उसकी समझ में फिर भी नहीं आएगा। आखिर वो इंतकामी तौर पर कलम या पेंसिल हाथ में लेगा और 786 लिखकर जो पहला फिकरा उसके जहन में आएगा उससे अफसाने का आगाज कर देगा। अब गोपीनाथ, टोबा टेक सिंह, हतक, मम्मी, मोजेल, ये सब अफसाने उसने उसी फ्रॉड तरीके से लिखे हैं। ये अजीब बात है कि लोग उसे बड़ा गैर मजहबी और फहश इंसान समझते हैं, और मेरा भी ख्याल है कि वो किसी हद तक इस दर्जे में आता है इसलिए कि अक्सर वो बड़े गहरे मौजूआत पर कलम उठाता है और ऐसे अल्फाज अपनी तहरीर में इस्तेमाल करता है जिन पर एतराज़ की गुंजाइश भी हो सकती है। लेकिन मैं जानता हूँ कि जब भी उसने कोई मजमून लिखा, पहले सफ़े की पेशानी पर 786 ज़रूर लिखा, जिसका मतलब है बिस्मिल्लाह। और ये शख्स जो अक्सर खुदा को ठुकराने वाला नज़र आता है, कागज़ पर मोमिन बन जाता है। ये वो कागजी मंटो है जिसे आप कागजी बादामों की तरह सिर्फ उंगलियों ही से तोड़ सकते हैं, वरना वो लोहे के हथौड़े से भी टूटने वाला आदमी नहीं। अब मैं मंटो की शख्सियत की तरफ आता हूँ और चंद उपाधियों में बयान कर देता हूँ। वो चोर है, झूठा है, दगाबाज है और मजमागीर है। उसने अक्सर अपनी बीवी की गफलत का फ़ायदा उठाते हुए कई कई 100 रुपये उड़ाए हैं, इधर 800 लाकर दिए और उधर चोर आंख से देखता रहा कि वो कहाँ रख रही है, और दूसरे दिन उसमें से एक सब्जा गायब कर दिया। और उस बेचारी को जब अपने इस नुकसान की खबर हुई तो उसने नौकरों को डांटना डपटना शुरू कर दिया। यूँ तो मंटो के मुतालिक मशहूर है कि वो सत्यवादी है, लेकिन मैं इससे इत्तफाक करने के लिए तैयार नहीं। वो अव्वल दर्जे का झूठा है। शुरू शुरू में उसका झूठ घर में चल जाता था, इसलिए कि उसमें मंटो का एक खास टच होता था। लेकिन बाद में उसकी बीवी को मालूम हो गया कि अब तक उसे उस खास मामले के मुताबिक जो कुछ कहा जाता रहा है झूठ था। मंटो झूठ बकदरे किफायत बोलता है, लेकिन उसके घर वाले मुसीबत ये है अब ये समझने लगे हैं कि उसकी हर बात झूठी है। उस दिल की तरह जो किसी औरत ने अपने गाल पर सुरमे से बना रखा हो। वो अनपढ़ है इस लिहाज से कि उसने कभी मार्क्स का मुताला नहीं किया, फ्रॉयड की कोई किताब आज तक उसकी नज़र से नहीं गुजरी, हेगल का वो सिर्फ नाम ही जानता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि लोग, मेरा मतलब है आलोचना करने वाले, ये कहते हैं कि वो इन तमाम विचारकों से मुतासिर है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मंटो किसी दूसरे शख्स के ख्याल से मुतासिर होता ही नहीं। वो समझता है कि समझाने वाले सब महामूर्ख हैं। दुनिया को समझाना नहीं चाहिए, उसे खुद समझना चाहिए। खुद को समझा समझा कर वो एक ऐसी समझ बन गया है जो अक्ल व फहम से बहुत ऊंचा है। वो कई बार ऐसी ऊट पटांग बातें करता है कि मुझे हंसी आती है। मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मंटो, जिस पर फहश निगारी के सिलसिले में कई मुकदमे चल चुके हैं, बहुत सफाई पसंद है। लेकिन मैं भी ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि वो एक ऐसा पांदाज है जो खुद को झाड़ता फटकारता रहता है।
आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।